بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جہاں ناظرین، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ 3 روز قبل پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ کیا اور اس کے بعد وہ وطن واپس گئے۔ ظاہر ہے کہ اس دورے کا مقصد ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو حتمی شکل دینا بتایا گیا تھا، اور جب پاکستان کے صدر یہاں سے واپس گئے تو پاکستان میں بہرحال یہ خبر زوروں پر رہی اور مختلف جلسوں میں اور مختلف محفلوں میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو اس بابت مبارکباد بھی پیش کی گئی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور پاکستان کے حکام خاص طور پر مشیر پیٹرولیم عاصم حسین کا کہنا ہے کہ آئندہ 11 مارچ کو خود پاکستان کی سرزمین میں گیس پائپ لائن کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ یہی نہیں، اس گیس پائپ لائن منصوبے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ گوادر میں اسلامی جمہوریہ ایران آئل ریفائنری تعمیر کرے گا، اور جیسا کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبے پر حتمی شکل انجام پا جانے کے بعد پاکستان ایران سے بجلی کی خریداری کے معاہدے پر بھی دستخط کرے گا۔ یہ تو رہی خبر، لیکن خبر پر جو رد عمل رہا وہ امریکہ کی طرف سے، اس نے پاکستان پر ایک بار پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس نے گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان کو اس گیس پائپ لائن منصوبے سے الگ ہو جانے کی بات کی، اور کہا کہ اس تعاون سے وہ دستبردار ہو جائے اور اس منصوبے میں شریک ہونے سے باز رہے۔ لیکن جیسا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور دیگر حکام اور پاکستان کی مختلف جماعتیں اور پاکستان کی بالخصوص قوم اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ اس منصوبے پر ہر حال میں عمل درآمد کیا جائے گا اور ہم کسی تیسرے ملک کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اس پائپ لائن منصوبے کی اہمیت، اس کی افادیت اور مستقبل میں اس کے کتنے ثمرات اور اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے مابین گیس پائپ لائن اور گوادر میں تیل ریفائنری کے منصوبوں پر جہاں دونوں ملکوں میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں امریکہ نے حسب معمول اس معاہدے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے ہفتے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ 11 مارچ کو ایرانی بارڈر سے گیس پائپ لائن کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا، جبکہ گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے معاہدے پر دستخط بھی ہو جائیں گے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری حال ہی میں ایران کا دورہ کر کے گئے ہیں، اور اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کے سلسلے میں بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ صدر زرداری ایران سے واپسی پر لاہور پہنچے تو گورنر پنجاب نے انہیں پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا اور ملکی مفاد میں منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا کہ اسلام آباد ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور وہ ہر حال میں ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرے گا۔ گیس پائپ لائن کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان کو ایران سے روزانہ کی بنیاد پر 2 کروڑ 15 لاکھ مکعب میٹر قدرتی گیس ملے گی۔ انرجی کے بحران سے دوچار پاکستان کے لیے یہ گیس پائپ لائن حیاتی اہمیت رکھتی ہے۔ ایران کی قومی گیس کمپنی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی علاقے میں پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر کا کام آئندہ 22 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ایران اپنے حصے کی پائپ لائن بچھانے کا کام پہلے ہی مکمل کر چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن اور تیل ریفائنری کے معاہدے بہت اہم ہیں اور پاکستان کی روز افزوں توانائی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ملک کی ترقی میں یہ معاہدے مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں۔ گیس پائپ لائن معاہدہ عرصے دراز سے دونوں ملکوں کے درمیان زیر غور ہے، تاہم امریکہ کی مداخلت اور دھمکی آمیز دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے اس معاہدے کے سلسلے میں لے تو لال سے کام لیا، جس کی وجہ سے معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی۔ معاہدے کے سلسلے میں تازہ پیش رفت کے بعد بھی امریکہ نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ پابندی کی زد میں آنے والی سرگرمیوں سے گریز کرے، توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور بھی آپشن ہیں۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے اس دباؤ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے بہت پہلے سے پاکستان کو گیس پائپ لائن معاہدے سے یہی کہتے ہوئے دور رکھا تھا کہ پاکستان کے پاس انرجی کی ضرورتوں کی تکمیل کے دوسرے راستے بھی موجود ہیں، تاہم یہ حقیقت پاکستان کے عوام اور حکام بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو انرجی کی ضرورتیں پوری کرنے کے متبادل راستے فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور یہ ملک انرجی کے بحران سے دوچار ہے۔ توانائی کے بحران اور معاہدوں پر عمل درآمد میں کوتاہیوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ مبصرین بھی معیشت کی سست رفتاری کی بڑی وجہ توانائی کے بحران کو قرار دیتے ہیں، جبکہ مقامی سرمایہ کار بھی بجلی اور قدرتی گیس کی فراہمی میں عدم استحکام کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے سامنے متبادل راستہ پیش کرنے کے لیے کئی سال کا موقع ملا، لیکن پاکستان نے دیکھ لیا کہ امریکہ اس کی مدد کرنے میں ناکام ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ خود متعدد لا ینحل مشکلات میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر پاکستان کا ایران سے گیس اور تیل ریفائنری سے متعلق معاہدہ قومی مفاد میں اٹھایا گیا قدم ہے اور امریکی دباؤ مسترد کر دینے کی پاکستانی حکومت کی پالیسی کی وجہ جہاں ایک طرف پاکستان کے قومی مفادات اور ضروریات ہیں، وہیں دوسری جانب امریکہ کی موجودہ بحرانی صورتحال بھی ہے، جس کے باعث امریکی دھمکیاں گیدڑ بھبکیاں ثابت ہو رہی ہیں۔
ناظرین، آپ نے ہمارے صادق تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اب یہ منصوبہ یعنی ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور جیسا کہ پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 11 مارچ کو پاکستان کے اندر اس پائپ لائن کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا اور باقاعدہ کام پاکستان کے اندر بھی شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستداں، اور میں یاد دلا دوں کہ پاکستان کی سینٹ کی پیٹرولیم کمیٹی کے سابق چیئرمین اور سابق سینیٹر سید دلاور عباس صاحب، جو اس منصوبے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ماضی میں ضرور منسلک رہے ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ جبکہ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار جناب غلام اکبر صاحب، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے علی جعفر زیدی صاحب، جن کی عالمی معاملات پر گہری نظر ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں سابق سینیٹر جناب سید دلاور عباس صاحب کی خدمت میں، جو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم
دلاور عباس صاحب۔ ظاہر ہے کہ ابتدا سے لے کے اور آج تک اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اس منصوبے پر آپ کی گہری نظر ہے، اور شاید جب سلسلہ جنبانی ہوئی تھی اس منصوبے کے تعلق سے تو اس میں شاید آپ جو اولین افراد تھے ان میں آپ شامل رہے ہوں گے۔ تو میں اب جب کہ یہ کوششیں اور کاوشیں برابر ثابت ہوا چاہتی ہیں تو اس منصوبے کی افادیت پر آپ کی زبانی سننا چاہوں گا۔
جی، جیسے کہ آپ کی رپورٹ میں اور جیسے آپ نے بات کی کہ اس منصوبے کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، تو اہمیت یہی ہے کہ ڈیفیشنٹ انرجی اویلیبل ریسورسز میں ہمارے پاس جو اپنے ملک کے اندر پیدا کردہ گیس یا تیل ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جو ہماری اپنی آبادی کے ایک ہی ریکوائرمنٹس کو اور آبادی کی ضروریات کو اور ان کے لیے جو انرجی کی اور بجلی کی یا جس کو پاور بولتے ہیں جی، اس کی ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانا اس کی ضروریات کو ملنے کے لیے، اس کے مطابق اپنی پیداوار کو آگے بڑھانے کے لیے हमारे पास रिसोर्सेज में एक वसाइल में कमी का सिलसिला जारी है और जारी था, और जब ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको आईपीआई भी पहले कहते थे कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, उसमें हिंदुस्तान का रोल पॉजिटिव नहीं था, बिकॉज हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस मंसूबे में, जिसमें ईरान और पाकिस्तान तो आगे बढ़ना चाह रहे थे, देर का बायस या जो इस मंसूबे में जितनी देर हुई या वक्त जाया हुआ, 2.5 से 3 साल, 3.5 साल का वो जो पीरियड है, वो सिर्फ इसी वजह से जाया हुआ कि हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपना के रखी हुई थी कि वो गैस वो लेना भी चाहता था, पर रियली वो अमेरिका से निगोशिएट कर रहा था कि वो न्यूक्लियर पावर एनर्जी सिविल यूज के लिए ले ले, और उसकी बेसिस पे वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिले करवाता जा रहा था। और ये जो देर थी, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस और भी बढ़ती जा रही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ईरान की सेनेट का वफद भी आया, मेरी उनसे मुझे मौका मिला कि मैं उनसे बात करूंगा। मैंने ये खुल के उस वक्त इजहार किया था
जी।
कि जी ये जो देर है, ये हिंदुस्तान की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मंसूबे को मुकम्मल करें, तो इसलिए हिंदुस्तान को बाहर करना चाहिए। तो आखिर में फिर वही हुआ कि हिंदुस्तान को बाहर किया गया, और अब हमने अपने मुल्क की जरूरियात को सामने रखते हुए और ईरान से जो वायदे के तहत गैस की अवेलेबिलिटी थी या जो हमें गैस कमिट की गई थी, उसके लिए फिर ये काम भरपूर तरीके से तमाम फैक्टर्स में, जिसमें पार्लियामेंट का अपना हिस्सा था, गवर्नमेंट का अपना हिस्सा था, गवर्नमेंट की मशीनरी का अपना हिस्सा था, पूरा जोर, उसके बावजूद कि अमेरिकन का प्रेशर कंटिन्यूड रहा हम पे, पहले तो वो डिले कराते रहे इंडिया के थ्रू, अब हमारे पे प्रेशर यही रखा कि जी ईरान की सेंक्शन, ईरान के मामला, ईरान की न्यूक्लियर। बट हम हर मुल्क जो एक सॉवरन मुल्क है, उसका एक सॉवरनिटी, उसकी जो उसकी डिमांड्स है, वो उसकी सॉवरनिटी के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो अपनी डिमांड और अपने मसाइल का हल खुद सोचे और उसके हल करने के लिए खुद आगे बढ़े।
जी सेनेटर साहब, एक मुख्तसर जवाब आपसे चाहूंगा। जी सेनेटर साहब, आप ही से एक मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, खा वो हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन जमात हो, अवाम हो, मुख्तलिफ शोभाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हों, या बतौर मजमू अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर कितना मुस्तहकम आज़म इरादा पाया जाता है?
जी पाकिस्तान के अंदर इतना मुस्तहकम इरादा ये पाया जाता है कि आप ये देखेंगे जब ये साइनिंग भी हो गई है, प्रोग्राम तय हो गया है, जॉइंट वेंचर कंपनी बन चुकी है, और ये $7.2 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 780 किलोमीटर की लाइन डलनी है, 900 किलोमीटर ईरान अपनी लाइन बिछा चुके हैं पर फिर से, उस चीज को सामने रखते हुए इस मैं समझता हूं कि प्रोजेक्ट के लिए, इस मंसूबे के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के अवाम के मुख्तलिफ तबके, पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई आवाज इसकी ना मुखालफत पे है, ना इस पे वो कोई अमेरिकन स्टैंड को सराते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने मसाइल के हल का खुद जिम्मेदार है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के आवाम के लिए ये करे। अमेरिका नो, अमेरिका बेशक ऑफर करता रहे, कभी वो कहते हैं कि जी हम 900 किलोवाट बिजली ले देते हैं, हम उसके वसाइल पैदा कर देते हैं, तो ये सारी चीजें सामने।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सही साहब, बहुत शुक्रिया। नवाजी साहब की आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, इंशाल्लाह हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं गुलाम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
गुलाम अकबर साहब, आप एक साफी भी हैं और एक सियासतदान भी, अभी जो आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा मुकम्मल हुआ ईरान का, उसके बाद जिस तरह से वहाँ खुशियाँ मनाई गई, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की जा रही है इस अजीम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, माहौल कैसा है?
देखें जी, ये एक इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस हुकूमत का जो परफॉर्मेंस ग्राफ चार पाँच साल में रहा है वो को बहुत ज़्यादा काबिले फ़ख्र नहीं था, और ये हुकूमत जो था एक्चुअली नेगेटिव बैलेंस शीट के साथ इलेक्शंस की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये दो बड़े फैसले किए हैं, एक ग्वादर का और एक ईरान पाइपलाइन गैस का, और ये बहुत मकबूल फैसले हैं। और बिल्कुल मैं इतफाक़ करता हूँ हमारे सेनेटर साहब ने, जो साबिक सेनेटर साहब ने जो फरमाया है कि एक्चुअली इसकी किसी तरफ से कोई इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी, उसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, मैं इकोनॉमिक इसके फ्यूज़ और बरकत जो हैं उसमें नहीं जाता, वो तो वक्त आएगा तो सारी कौम को मालूम हो जाएगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इसकी जो सबसे सिम्बॉलिक वैल्यू है कि ये, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सावरेंटी की तरफ पहला बड़ा कदम है। कोई भी मुल्क जो है, कोई भी ममलिकत आज के दौर में अपने आप को आज़ाद समझने में हक बजाने नहीं है जो अपनी इकोनॉमिक सावरेंटी जो है वो एक्सरसाइज करने की पोजीशन में ना हो। देखिए ना, अमेरिका का दबाव जो है वो तभी कारामद होता है जब उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दबाव जो है ना उसके ताकतवर, वो हम पर दबाव जो है सिर्फ माली मामलात में डालता है। देखिए, अगर वो हम पर सैंक्शंस भी लगाए तो हम पर सैंक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, इस वजह से कि हम फौजी नुक्ता नज़र से पहले ही अमेरिका की मोहताजी से तकरीबन निकल चुके हैं। और इसके अलावा भी हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंस, पहले भी हम सैंक्शंस का सामना कर चुके हैं इनका, जब हमने एटमी धमाके किए थे, मैं क्लिंटन के दौर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमने काफ़ी बुश के आने के बाद जो हालात वार ऑन टेरर के नाम से जो हम पर एक खौफनाक जंग मुसलत की, हमें फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया गया, उसके उससे पहले हम सारी सैंक्शंस का मुकाबला, हमें उसका सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हमारी चूंकि मईशत इतनी ख़राब कर दी गई है और उसको इतना तबाही के किनारे तक पहुँचा दिया गया है कि हमें माली, जैसे कहते हैं ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिस्म जो है अगर उसमें ब्लीडिंग होती रहे तो उसे खून की ज़रूरत होती है, और सरमाया जो है वो एक नेशनल इकोनॉमी के लिए खून की हैसियत रखता है, ये अमेरिकन को मालूम है। और अमेरिकन एक ही दबाव डालेंगे और वो डाल रहे हैं कि खबरदार, अगर आपने ईरान के साथ आगे बढ़े तो सैंक्शंस की बात तो पहले भी करते रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम सैंक्शंस के लिए तैयार हैं। और लेकिन अब देखना यह है, जो मेरी एक, आपने कहा सियासतदान में पॉलिटिशियन, बिल्कुल रवायती सेंस में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एनालिस्ट के तौर, पोलिटिकल एनालिस्ट तौर पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं ये दो बड़े फैसले जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने किए हैं ये कहीं इलेक्शन के गिमिक्स ना हों, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और ये फैसले बड़े मकबूल हैं, इससे उस डेफिनेटली हुकूमत का, पार्टियों का, जरदारी साहब का अपना ग्राफ बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पे उन्होंने इस मौके पे, अगरचे ये मामला काफ़ी तय हो चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस के तौर पर अमेरिका के दबाव को यानी एक्चुअली नेगेट करने के लिए दौरा किया, और ये दौरा भी बड़ा कामयाब रहा, ये हाई प्रोफाइल दौरा था, इसमें रैबर ईरान के खमेनाई उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई, फिर यह है कि एक बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, और ये सारी बातें जो है ना ये बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि
बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब, मैं फिर हाजिर हूँ। जी
पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए,
बहुत शुक्रिया,
पाकिस्तान ने दबाव जो है,
मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर और सीनियर तर्ज़ निगार अली जाफर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
जैदी साहब, आप क्या फरमाते हैं? दो मेहमानों की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव कितना मुअसर होगा और खुद अमेरिका किस हद तक जा सकता है इस मसले पर?
जी, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू में जो पॉइंट रेज हुए उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, इसलिए कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, जो एनर्जी क्राइसिस वहाँ मौजूद है, उसका तकाजा है कि जो अमेरिकन दबाव के बावजूद जहाँ से भी एनर्जी क्राइसिस को हल किया जा सके वो तमाम रास्ते ढूंढने चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और आज से नहीं, ये एक अरसे से, जब से लियाकत अली ने पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में डाला, उसके बाद से पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। हमारे बिजली के जो रेट्स हैं वो भी IMF मुकर्रर करता है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, और उसके पॉलिटिकल डेफिनेटली उसके रिपरकशंस भी हैं, और उसमें अंदरूनी तौर पर मुल्क के अवाम इसको अप्रिशिएट करेंगे। इनका ग्राफ, जैसे अकबर साहब ने कहा, ऊपर गया है, और देखना यह है कि ये जो बयानात आए हैं कि हम ये करेंगे और हम ये करेंगे और हम ग्वादर में ये रिफाइनरी लगाएंगे और अप्रैल से ये काम शुरू हो जाएगा, तो ये गा है, गे है, यानी इट्स ऑल, इसमें अभी तक ये जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि वाकई ये प्रेशर के सामने कितना ठहरते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अब कोई प्रेशर इतना शायद, अगर कजाकिस्तान में वेस्ट ने अपना प्रेशर ईरान पर कम कर दिया है, और अप्रैल में होने वाली जो मीटिंग है 5+6 की, जो अभी कजाकिस्तान में हुई, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वेस्ट ने ईरान पर कुछ नरमी और नरम रवैया अख्तियार किया, तो अप्रैल में उसकी भी शक्ल सामने आ जाएगी। तो अगर अमेरिका ईरान के बारे में रवैया थोड़ा सा मुस्बत इख्तियार करता है, तो अमेरिका पर मबनी जितने ममालिक जो उसकी एड पर, जो उसकी रहमो करम पर हैं, ममालिक भी और उनकी जो हुकूमतें हैं वहाँ कायम वो भी, तो उनका रवैया भी ईरान के बारे में तब्दील होना यकीनी है। चुनाचे आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो ये प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर कितना रहता है, इसलिए कि आने वाले दिनों में वेस्ट का प्रेशर ईरान से भी पर भी कम हो रहा है। चुनाचे ये जो प्रेशर की बात है, ये एक रिलेटिव सी बात है टाइम के एतबार से, तो वक्त के साथ इसको मुंसलिक करके अगर देखें तो उसमें ये प्रेशर बज़ाहिर कोई प्रेशर नहीं लगता, क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स इस वक्त ईरान के हक में हैं, और वेस्ट का प्रेशर ईरान पे कम होगा तो ऑब्वियसली उसके जो हाशिया बरदार मुल्क हैं और हुक्मरान हैं उन पर भी कम होगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव कदम है पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए।
बहुत शुक्रिया, मैं बिराजूंगा। सेनेटर दिलार अब्बास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 700 कुछ किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, और जिसकी तामीर के संग की बुनियाद आइंदा 11 मार्च को रखा जाएगा, और ये तय पाया माहदे में कि 2014 के अख्ताम तक तकरीबन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो क्या समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकेगा इस अरसे में?
हाँ जी बिल्कुल, ये अपने टाइम पे मुझे मुकम्मल इतमाद है कि ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बात, जब जाफर साहब बता रहे थे इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिकन अपना प्रेशर रखते हैं, तो जब केस ऑफ इंडिया उनके सामने आता है तो इंडिया इज वन ऑफ द बायर्स ऑफ ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मीन सबसे बड़ा ज्यादा जो उनके पास है वो क्रूड ऑयल लेते हैं ईरान से, तो क्यों नहीं पाबंदी लगाता उन पे? वो भी इस जुमरे में क्यों नहीं इंडियंस को मना कर सकते? इसलिए कि जहां वो चाहते हैं वो एग्जर्ट करते हैं, जहां नहीं चाहते वहां। और मैं एग्री करता हूं मैं सबसे कि लेटली जो डिप्लोमेटिक्स मूव हो रही हैं उसमें अमेरिकन्स ने अपने प्रेशर को कुछ कम किया है, और वो दे देमसेल्फ आर रियलाइजिंग कि ये बात इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं अपना दुनिया में अपना ये जो बालादस्ती कायम रखने के लिए उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात जो है वो दोनों ममालिक जो है और आगे बढ़ेंगे, और ये रिफाइनरी का जो दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है वो भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि एक दफा पहले हमें जो कदम उठाना है वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, आईपी जो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इसके बाद बहुत सारे रास्ते खुलेंगे और चीजें बेहतरी की तरफ और जाएंगी इंशाल्लाह।
जी सेंटर साहब, आप ही से पूछना चाहूंगा कि अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान से कि इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो जाओ, हम तुम्हें तवानाई या बिजली फराहम करेंगे, वो कहां से और किस रास्ते से फराहम करने पर कादिर होगा?
सॉरी, कुछ आपका,
मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका बार बार जो पाकिस्तान से ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट से आप दस्तबरदार हो जाइए, आपकी तवानाई की जरूरियात हम पूरी करेंगे, अमरीका कह रहा है, तो अमरीका कहाँ से, किस तरह से, किस रास्ते से पूरी कर सकेगा?
नहीं देखिए जी, अमेरिकन आर ऑफरिंग के जी फलानी टेक्नोलॉजी के तहत और फलाना टेक्नोलॉजी जर्मनी से लाएंगे और बैटरी के वो हमारे जी कोल गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है जिसमें से गैस अवेलेबिलिटी के बाद इस इन प्रोजेक्ट्स पे एनर्जी जनरेशन के लिए काम दे सकती है।
सर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल बेहतर हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथी कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रابطہ करें। गुलाम अकबर साहब, आप देखें कि जिस वक्त ये पाइपलाइन मंसूबे की बात हो रही है, ऐन उसी वक्त ग्वादर में चीन की सरमाकारी की भी बात हो रही है और ईरान की तरफ से एक ऑयल रिफाइनरी के क़याम और तामीर की भी बात जोनों पर है और उस पर भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 11 मार्च के बाद किसी भी वक्त दस्तखत हो सकते हैं। ग्वादर में बैक वक्त चीन और ईरान की मौजूदगी सरमाकारी के ताल्लुक से अलबत्ता, ये आइंदा चलकर सियासी और इकतसादी एतबार से किस बात का पता देती है और क्या नताइज इसके सामने आ सकते हैं?
देखिए, ये बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है, मैं ये समझता हूँ। अब इसमें इसका क्रेडिट जो है वो टेक्निकली मौजूदा हुकूमत को ही जाता है, जरदारी साहब की, अगरचे जो पास्ट रिकॉर्ड है 4 साढ़े 4 साल का वो ये कि हमारे मुल्क में दो मुतवाजी हुकूमतें चलती रही हैं। एक वो जो बज़ाहिर डील करती है, जिसकी अलामत हुसैन अकानी थे और जिसके हवाले से मेमो गेट का इशू भी आया कि अमेरिकन डिक्टेशन बहुत चली है कैरी लूगर बिल वाले हवाले से। एक जो था पैरेलल, कहीं ना कहीं किसी न किसी अंडर करंट में एक हुकूमत वो चल रही है जिसने अमेरिका को डिफाई किया है। आप देखिए, ये सलाला चेक पोस्ट के बाद भी हमने उन पर पाबंदियाँ लगाई, हमने रास्ते बंद किए, उनकी सप्लाई लाइन रोक के रखी, वो बड़ा प्रेशर पड़ा, लेकिन हमने उस वक्त तक जब तक कि वो हमारी शरायत पर वो नहीं आए हमने। मैं पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री की तरफ ही जाऊँगा कि हमने जहाँ नेशनल इशूज़ हम एक दफ़ा डिटर्मिन कर लें कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि ग्वादर का और ईरान की पाइपलाइन का जो मसला है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के इशू है, उसी तरह से जिस तरह से 80s में न्यूक्लियर पावर बनना हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू था, हमने हर अमेरिकन प्रेशर जो है 2 दहाइयों तक न सिर्फ ये कि रिजिस्ट किया, हमने उनको ब्लफ भी किया और हम कामयाब हुए। बिलाखिर 1998 में हम जो है बिल्कुल डिक्लेयर्ड एक एटॉमिक पावर बन गए। तो प्रेशर रिजिस्ट करने की सलाहियत हमारी कौम में मौजूद है, एटलीस्ट उन लोगों में जो दर हकीकत इस मुल्क के मुकद्दर के, मतलब ये समझिए जिनके हाथों में होता है। तो मैं उन इसको इस बात की वजाहत नहीं करूंगा, इस वक्त भी मुझे यकीन है कि अगर ये हुकूमत 16 मार्च तक की मेहमान है जिसने ये माहिदा जो है ना जिस पर दस्तखत किए हैं, और जरदारी साहब जो है ना एक सदर के तौर पर उनके कोई अख्तियारात नहीं रहेंगे क्योंकि उनके सारे अख्तियारात जो थे पार्टी के सरबराह के तौर पर थे, वजीर आजम जो है ना वो डिफेक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव है लेकिन उनकी पार्टी के, इसलिए उनके पास अख्तियार थे। फिर भी मैं समझता हूँ कि 16 मार्च के बाद जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या उसके बाद जो भी निज़ाम आएगा, इलेक्शंस के नतज क्या होंगे कोई नहीं जानता, अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो रिट्रीट करे, वापसी का रास्ता अख्तियार करे। ग्वादर के मसले पर वहाँ भी आपने बताया कि चाइना और ईरान दोनों एक जगह से कामन हो गए हैं एक नेशनल रिफाइनरी के इशू पर, और ग्वादर पोर्ट की मैनेजमेंट जो है ना वो चाइना के हाथ में चली गई। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है क्योंकि ये सारा खेल, ये सारी लड़ाई जो है वो बेसिकली इस कोस्ट लाइन की चली आ रही है और ये बड़ी कई दहाइयों से चल रही है, और इसमें पाकिस्तान ने एक मैं समझ बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया है। सिर्फ हमें हम दुआ करते हैं कि जो भी कि ये हकीकी हो और इसको हम हर प्रेशर जो है ना उसका मुकाबला कर सके। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ईरान की पॉलिसी में भी तब्दीली आएगी। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आज से 6-8 महीने पहले कहा था कि ओबामा सेकंड टर्म में, देखिए अभी एक वाकया हुआ है, अभी ताज़ा तरीन आप जान कैरी इस्तांबुल पहुँचे हैं, वो एक कॉस्मेटिक पॉलिसी अलग रखते हैं, वो बड़े सख्त बयानात की होती है, लेकिन वो अंडर करंट में एक और पॉलिसी भी चलाते रहते हैं। मेरे ख्याल वो अंडर करंट जो पॉलिसी है वो ईरान की तरफ अब उनकी जो है वो सख्त,
बहुत शुक्रिया आपका अनुग्रह पर साहब, बहुत शुक्रिया
तक रहेगी और वो बेसिक टॉलरेंस लेवल उनका बढ़ता जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं दिलावर अब्बास साहब की खिदमत में चलूंगा, उनसे रबता मुनक़ा हो गया था। दिलावर अब्बास साहब आप क्या फरमाना चाहेंगे ग्वादर के ताल्लुक से? अमरीका जो अब तक सिर्फ IP जो पाइपलाइन है उस पर मुखालफत करता रहा और पाकिस्तान को घुड़कियाँ और धमकियाँ देता रहा, अब जबकि ये बात भी तश्तस बाम हो गई कि ग्वादर में चीन भी है और ईरान भी है, तो अब अमेरिका का रवैया इस ताल्लुक से क्या हो सकता है आइंदा चलकर? बजाय ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सेनेटर दिलावर अब्बास साहब की खिदमत में। एक बार चलते हैं फिर दोबारा लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है हमारे मोजज़ मेहमान अली जाफर जैदी साहब। जी जैदी साहब, तकरार मुकर्रात से बचने के लिए जो सवाल मैंने दिलावर अब्बास साहब से किया उसका जवाब आपसे चाहूँगा।
जी देखिए, ये जो जोग्राफियाई हमारा महल वकू है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दुनिया भर की ताकतें हमेशा से उनका दिलचस्पी रही और कोशिश वो करते रहे कि उनका टकराव आपस में रहा इसी बात पर कि हमारे जोग्राफियाई महल वकू पर जो रियासती तसल्लुत है वो किसके ज़ेरे असर जाता है। इसमें जब सोवियत यूनियन था, चीन था, अमेरिका था, एक रस्सा कशी रही और उस वक्त की क़यादत इतनी बिलखसूस भुट्टो साहब ने एक बैलेंस क्रिएट किया और चीन से भी दोस्ती की पाकिस्तान की और अमेरिका से भी एक ताल्लुक़ रखा और रूस से भी हमने स्टील मिल वगैरह ली। तो ये इस खित्ते में ये जो बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट है ये हमेशा से मौजूद था और रहेगा। अब चीन को सारी दुनिया के सामने ये बात वाजे हो चुकी कि वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मंडियों पर कब्ज़ा कर रहा है। अफ्रीका में अब जो ये अमेरिका का घुसना है उसकी पेश नज़र या उसमें जो उनको ख़तरा नज़र आ रहा है कि चीन वहाँ की मार्केट्स को कंट्रोल करता जा रहा है और इवन अमेरिका की अपनी मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चाइना की बनी हुई मिलती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीन बड़ी खामोशी के साथ अपनी जो हदफ है वो हासिल करता जा रहा है और ग्वादर में चीन का आना और ईरान का अगर वाकई वहाँ आना मुमकिन हो जाए तो फिर पाकिस्तान की जो बिल्कुल एक ताकत के साथ अमेरिका का दुमछल्ला बनने का जो एक उस पर उसने रास्ता इख्तियार किया है उसमें थोड़ा सा बैलेंस आएगा और फिर शायद पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट की हैसियत में अपनी खारजा पॉलिसी को एडॉप्ट कर सके और एक खारजा पॉलिसी जो आज़ाद पॉलिसी है वो बन सके और उस ईरान, चीन और बाकी तमाम जो और बिलखसूस हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ और रूस ख़ास तौर पर अगर इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में डेवलप होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्तहकम होता है तो इलाके के ये ममालिक भी मुस्तहकम होते हैं और उनको भी फ़ायदा पहुंचता है। तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो है ही कि बाहर के जो दीगर ममालिक हैं वो इंटरेस्ट लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने लिए भी और बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं उनके लिए भी ये बात बहुत मस्बत है और पाकिस्तान को एक गुलामी की जो
बहुत शुक्रिया मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत
में पहुँचा हुआ है उससे आज़ादी मिल सकती है।
बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया था कि 16 मार्च के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी, यानी अब आज 2 मार्च से यूं कहा जाए कि 14 दिन के बाद, तो आने वाली जो आइंदा 3 महीने तक तो जाहिर है कि निगरान हुकूमत होगी, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो कितना प्रेशर दबाव कबूल कर पाएगी अमेरिका का इस ताल्लुक से?
देखिए, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि वो निगरान हुकूमत जो है वो किस नौईयत की होगी, क्या वो सिर्फ उसका जो मैंडेट होगा इलेक्शन कराना होगा, ये बात वैसे मुमकिन नहीं है। आइनी तौर पर जो भी हुकूमत, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी, खा वो एक मखसूस मुद्दत के लिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास अख्तियारात होते हैं, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। लेकिन एक कंटिन्यूटी है, यानी ये जो फैसला चीन का और ईरान का हुआ है दोनों के ग्वादर के हवाले से और गैस पाइपलाइन के हवाले से, वो हुकूमत का कोई आइसोलेटेड फैसला नहीं है, पाकिस्तान पीस पार्टी और उनके एलाइज का, इसमें और ताकतें शामिल हैं जो पाकिस्तान में मैटर करती हैं और जिनकी कंटिन्यूटी रहेगी। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे, इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि अब किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होगा आने वाले पीरियड में, और कोई ऐसी ताकत पाकिस्तान में उभरती नजर नहीं आ रही जो पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ प्रो अमेरिकन पॉलिसी अख्तियार करने की। अब उसकी वजह से अमेरिकन खुद रिट्रीट पे हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है। वहाँ देखें ना, अमेरिकन इस वक्त आज भी वहाँ जो जंग चल रही है वो चल रही है कट्स की, वहाँ जो है ना वो अपने डेफिसिट को कम करने और बहुत बड़े पैमाने पे वो इवन डिफेंस बजट को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास पैसा है नहीं कि वो पाकिस्तान में या हमारी हुकूमतों को दे। तो ये बात हमारे हुक्मरानों की समझ में आ गई है कि अब अमरीका के साथ तल्लुकात जो हैं वो सिर्फ माली फ़ायदों के लिए नहीं रखे जा सकते, क्योंकि माली फ़ायदे इस तल्लुकात रखने के अब हैं ही नहीं। उन्होंने देखे ना, हमारे बिल पे करने हैं, वो बिल पे नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कैश रिच कंट्री नहीं है, अब वो कैश के लिए चाइना का मोहताज हो गया है। चाइना और अमेरिका का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो इतना बड़ा है कि खुद अमेरिकन को अब नींदें नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन में आ गए हैं। ये फैसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे हटकर सोचा है कि हम एक डिपार्चर माजी से हम हासिल कर सकते हैं, हम माजी को पीछे छोड़कर आगे की तरफ, और ये जो एक्सेस बनेगा ईरान चाइना पाकिस्तान, ये एक नया पैराडाइम क्रिएट हो रहा है। इसमें देखना, सूडान के साथ भी चाइना के तल्लुकात है, वहाँ उन्होंने आयल एक्सप्लोरेशन अभी जो इशारा कर रहे थे जही साहब, कि अफ्रीका में चाइना इतने बड़े पैमाने पे घुसा है कि अमेरिकन को पता ही नहीं लगने दिया। तो इसी तरह से ग्वादर में आना चाइना का, ये मेरे ख्याल में जो फासला नॉर्मली 10 साल में चाइना ने तय करना था वो 1 साल में कर लेगा।
बहुत शुक्रिया आपका जैदी साहब। कमर जमान कायरा जो वजीर इत्तला नशियात हैं, उन्होंने एक और बात कही कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके फौरनी बाद हम ईरान से बिजली की खरीदारी के भी माहदे पर दस्तखत करेंगे, और बहरहाल कमोबेश बिजली पाकिस्तान को सरहदी इलाकों में तो ईरान की तरफ से जाती ही रही है, तो अब ये ऑयल रिफाइनरी की तामीर, फिर बिजली की खरीदारी और इतना बड़ा अजीम प्रोजेक्ट गैस पाइपलाइन मंसूबा, ये सब कुछ मंजर आम पर जाने के बाद क्या आइंदा 3 माह या 3.5 माह के बाद जो बनने वाली मुंतखब हुकूमत है अमरीकी प्रेशर में आकर आसानी से नज़रअंदाज करने की पोजीशन में होगी?
देखिए, जो एग्रीमेंट्स हैं वो तो हुकूमतों के दरमियान होते हैं, सरबराहान ममलिकत तो साइन करते हैं, दो मुल्कों के दरमियान माहदे होते हैं और उसको सर्द खाने में डाल सकते हैं, उसको टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। आने वाली जो भी हुकूमत होगी, अब उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी उसको शायद इस बात की इजाज़त ना दें कि वो मुल्क जो इस वक्त इतने बहरान का शिकार है, बिजली का बहरान है, माशी बहरान है, और बिजली से मुंसलिक जो इंडस्ट्रियल बहरान है, यानी अब तो लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग वो बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दी क्योंकि बिजली नहीं होती, फैक्ट्रियां चलती नहीं हैं। तो अगर मुल्क की इकोनॉमी को जो भी हुकूमत आएगी अगर उसने उसको थोड़ा सा भी खड़ा करना है तो बुनियादी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म किया जाए या कम से कम कम किया जाए, ताकि वहाँ का जो सनत का पहिया है और जो सनत वहाँ की मईशत ने एक रोल प्ले करती है और एक उसमें मईशियत का, यानी सिर्फ ज़राअत पर तो आप पाकिस्तान की पूरी यानी उसकी मईशियत मबनी नहीं रह सकती। तो अगर किसी ने भी मुल्क को ठीक करना है, अगर वाकई वो दयानतदार है, बाकी अगर आकर मुल्क को फिर लूट मार और फिर उसके जो उसको और खोखला करने वाली बात है उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर जनरली कोई हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ा सा भी ठीक करना चाहेगी तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये जितने एग्रीमेंट्स हैं इन पर वो कंटिन्यू करे, आगे बात को लेकर
बहुत
जाए।
शुक्रिया आपका, बहुत
और
शुक्रिया।
शायद
जी जैदी साहब, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आपकी बात मैंने काटी, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया। गुलाम अकबर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि ईरान में इसको अमन गैस पाइप लाइन का नाम दिया जाता है और पाकिस्तान में जाहिर है ये भी वहाँ भी ऐसे ही उसका उनवान है, लेकिन जब इस गैस पाइपलाइन की बात होती है तो कहीं ना कहीं से एक खदशा ये जाहिर होता है कि 700 से जायद यानी 700 किलोमीटर से जायद तवील खुद पाकिस्तान के अंदर यह पाइपलाइन होगी, तो इसकी सिक्योरिटी को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकेगा? आया हुकूमत इस पर कादिर है?
यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा जी हमारे लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी वायलेंस हुई है, टेररिज्म के नाम पे कह लिए, जिस तरह से भी है, इसके पीछे डेफिनेटली उन ताकतों का हाथ है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं, जो इस किस्म के माहदों को आगे चलने देना नहीं चाहती। देखिए, ये पाइपलाइन जो है ये हमारा इम्तिहान होगी, हमारी एबिलिटी का, हमने इसको गार्ड करना है, इसके लिए हमें अपने वसायल और अपनी पूरी कुवतें, पूरी तवानाइयाँ जो हैं वो खर्च करनी पड़ेंगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और अगर हमारे पॉलिटिकल विल हुई तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। ये होगा चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो इसको नामुमकिन बना दें इसकी सिक्योरिटी को।
जी आपसे भी वही चुपता हुआ सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि 3.5 माह के बाद जो आने वाली हुकूमत होगी, बस 30 सेकंड के अंदर जवाब चाहूँगा, वो किस पोजीशन में होगी अमरीकी दबाव कबूल करने के ताल्लुक से?
मेरे ख्याल में वो अमरीकी दबाव कबूल करने की यानी इस सेंस में नहीं कि वो डिफाई करने की पोजीशन में होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में फैसला ही इस बात पे होना है कि अमेरिका का पिटू कौन है और अमेरिका को डिफाई कौन कर रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
जो
शुक्रिया।
मौजूदा हुकूमत है उसने ये डिफाइंस की पॉलिसी इसी उम्मीद पे अख्तियार की है।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, और 11 मार्च को जैसा कि पाकिस्तान के हुक्काम ने खुद कहा है कि उसकी तामीर का संग बुनियाद पाकिस्तान के अंदर रख दिया जाएगा। ईरान के अंदर तो जितनी दूर इस पाइपलाइन को जाना था वो बिछ चुकी है। बहरहाल ये पाइपलाइन जब अमली शक्ल अख्तियार कर जाएगी और इससे इस्तेफादा शुरू हो जाएगा तो खित्ते के अवाम बखूबी इस बात का एहसास करेंगे कि इसके कितने समरात हैं, इसके कितने फ्यूज़ व बरकत हैं, और खित्ता किस तेज़ी के साथ खुशहाली की जानिब जा रहा है। और अगर कोई ताकत इस मंसूबे की मुखालफत कर रही है तो ये बात साफ है कि वो ताकत खित्ते के अवाम को खुशहाल नहीं देखना चाहती। और जैसा कि कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनी ने भी पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में फरमाया था कि इलाके की जो इंसानी तवानाइयाँ हैं, जो जोग्राफियाई तवानाइयाँ हैं, जो कुदरती तवानाइयाँ हैं, उनको उभारने की ज़रूरत है और उनसे इस्तेफादा करके इलाके को खुशहाल बनाया जा सकता है, और इस पर पूरी संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि जोग्राफियाई पोजिशन हमारे पास है, वो इस्तेदाद हमारे पास है, इंसानी इस्तेदाद हमारे पास है, और कुदरती ज़खायर अल्लाह ताला की दी हुई नेमत भी हमारे पास है, तो हमें उनसे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए, और इसके लिए किसी की डिक्टेशन और किसी की चौधराहट हमें हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।